स्वागत है आपका दिनभर में। आज है 5 मार्च, दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। त्रिपुरा में वामपंथ का किला फतह करने के बाद बीजेपी की खुशी में पड़ी खलल। सहयोगी दल आईपीएफटी ने जनजातीय मुख्यमंत्री की मांग कर फंसाया पेंच।
जो हमारा जो कंटिन्यू करना ये हम लोग का चर्चा करना पड़ेगा, सीधा रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा।
भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी हमले में 2 चरमपंथी समेत 6 लोगों की मौत से फिर बिगड़ी घाटी की शांति। एसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के आदेश, छात्रों का प्रदर्शन जारी।
जो उनकी डिमांड थी एसएससी के संबंधित छात्रों की, वो डिमांड पूरी की जा चुकी है और सीबीआई जांच का आदेश किया जा चुका है।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 8 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कर रही है, लेकिन भाजपा की इन तैयारियों पर क्षेत्रीय दल इंडिजीनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी ने मुश्किलें खड़ी कर दी है। आईपीएफटी के नेता ने सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी के सीएम पद की दावेदारी पेश की है। 3 मार्च को आए चुनावी नतीजों में त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों में भाजपा 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, वहीं आईपीएफटी को 8 सीटें मिली थी। त्रिपुरा में 25 साल बाद वामपंथी दल सीपीआईएम को हार का सामना करना पड़ा था। सीरिया में मानवीय सहायता आपूर्ति के साथ लगभग 50 गाड़ियों की एक टुकड़ी युद्धग्रस्त इलाके पूर्वी गूटा में प्रवेश कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यह सहायता आपूर्ति सीरियाई सरकार की इजाज़त मिलने के बाद भेजी गई है। इसमें 27,000 लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी। वहीं सहायता अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें जैसे ट्रॉमा किट आदि को प्रभावित इलाके में प्रवेश करने से रोक दिया गया। सहायता टुकड़ी के साथ सफर कर रहे संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी अली अल जतारी ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियों पर किसी तरह का हमला नहीं किया जाएगा। कम से कम सहायता टुकड़ियों के लिए तो संघर्ष विराम का सम्मान किया ही जाएगा। हालांकि हमारे पास पर्याप्त सहायता सामग्री नहीं है, बहुत सी चीज़ों को कम कर दिया गया है। ये थे सहायता टुकड़ी के साथ सफर कर रहे संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के लिए शानदार डिनर की व्यवस्था की है। यह जानकारी दक्षिण कोरियाई सरकार ने दी। दक्षिण कोरिया का एक शांति प्रतिनिधिमंडल उत्तर कोरिया के दौरे पर गया है। किम जोंग उन के सत्ता पर काबिज होने के बाद उन्होंने पहली बार दक्षिण कोरिया के अधिकारियों से मुलाकात की है। दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल में उच्च सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन के दौरे पर भी जाएगा, जहां वह उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बातचीत करवाने के प्रयास करेगा। इटली में सत्ता विरोधी 2 दलों ने सरकार बनाने के लिए अपने अपने दावे पेश किए हैं। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई 5 स्टार मूवमेंट के नेता लुइगी दी मेगो ने इन नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ये चुनाव विचारधाराओं के बजाय मुद्दों पर आधारित थे। उन्होंने कहा,
पर इल मूवमेंटो 5 स्टेले queste elezioni politiche sono state
5 स्टार मूवमेंट के लिए यह चुनाव जबरदस्त साबित हुए हैं। हम इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। इटली की जनता को हमारा बहुत सारा आभार। हमें वोट करके उन्होंने हमें सम्मान दिया है। ये थे 5 स्टार मूवमेंट के नेता के शब्द। इराक की सरकार ने सद्दाम हुसैन से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में सद्दाम हुसैन के परिवार और उनके पूर्व अधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने की बात भी कही गई है। न्याय विभाग की तरफ से जारी की गई सूचना में सद्दाम हुसैन के बच्चों और पोते पोतियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आज सुबह 90वें ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई। इस बार ऑस्कर बटोरने के मामले में डनकर्क, 3 बिलबोर्ड और कोको जैसी फिल्में सबसे आगे रहीं। डनकर्क को 8 और 3 बिलबोर्ड्स को 7 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जबकि शेप ऑफ वाटर को 13 नॉमिनेशन मिले थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब द शेप ऑफ वाटर को दिया गया, वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब डार्केस्ट आर के लिए मैरी ओल्डमैन को मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड 3 बिलबोर्ड्स के लिए फ्रांसिस मैकडोरम को मिला। इस बार बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी और अभिनेता शशि कपूर को भी श्रद्धांजलि दी गई। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। त्रिपुरा में बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन ने वामपंथ का गढ़ भेद कर बड़ी जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है। 60 सदस्यीय विधानसभा में 59 सीटों के लिए हुए मतदान में बीजेपी को 35 और उसकी सहयोगी इंडिजेनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 8 सीटें मिली, और ऐसा लग रहा था कि 3/4 बहुमत हासिल करने वाला बीजेपी गठबंधन आसानी से सरकार बना लेगा। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई है, लेकिन गठबंधन सहयोगी आईपीएफटी ने जनजातीय मुख्यमंत्री बनाए जाने का दावा पेश कर जश्न में डूबे बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है। आईपीएफटी के अध्यक्ष एनसी देवबर्मा ने बिना भाजपा से बात किए खुद ही घोषणा कर दी कि त्रिपुरा का अगला मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने एनसी देवबर्मा से फोन पर बात की, जो कि इस वक्त पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ इसी मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं।
ये तो सारे पार्लियामेंट्री जो टीम है ना, वो टीम वो तो ठीक करेगा।
नहीं तो क्या आप अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, या अपनी मांग आप छोड़ेंगे, या आपका जो रुख है वो थोड़ा सा नरम होगा?
इसके बारे में तो क्या वो कितना तो ये हमारा मांग रहेगा नहीं रहेगा, ये अभी मीटिंग का बाद ही हम लोग का कम्युनिकेट कर दूंगा। कल एक मीटिंग होने वाला है बीजेपी का दिल्ली से, नितिन गडकरी जी और जुअल उरंग जी आ रहा है, इसी उनको साथ भी हम लोग का इंटरेक्शन होगा कल।
लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपनी ये मांग क्यों रख रहे हैं कि या तो मुख्यमंत्री हमारा होगा या फिर अलग राज्य की बात कह रहे हैं आप?
ये हमारा बात नहीं है, ये हमारा डिमांड है ही नहीं। ये सारे त्रिपुरा का जनजाति लोगों का, जो लोगों ने बहुत बहुत से अच्छा कोर्स से वोट कास्टिंग किया बीजेपी आईपीएफटी को, बहुत सारे एसटी सीट को जिताया, तो इसके डिजे रही है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई अकेले कोई डिजेयर है ही नहीं, डिजेयर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑल ओवर त्रिपुरा स्टेट वोटेड इन फेवर ऑफ बीजेपी आईपीएफटी एलियंस टू गेट देम द पावर एंड थ्रोन आउट टू द सीपीआईएम, दैट इज द थिंग।
तो क्या पहले आपकी बात नहीं हुई थी कि अगर चुनाव के नतीजे या रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में रहता है तो हम मुख्यमंत्री अपना बनाए जाने की, जनजातीय मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग रख सकते हैं, ये बात पहले नहीं हुई थी?
नहीं नहीं, इसे कोई शर्त नहीं रखा था। जब तो हम लोग का जो एलियंस का जो बड़े में जॉब हुआ, इसी बताई में जनजाति मुख्यमंत्री देना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सन व कंडीशन नहीं रखा गया।
तो अब ये मांग क्यों उठाई जा रही है? तो अगर बीजेपी ये डिमांड नहीं मानती है तो क्या करेंगे फिर आप?
ये डिमांड नहीं मानने से हम लोग क्या करना है, हम लोग तो एलियंस में है, एलियंस के जो हमारा जो कंपनी वो करना है कैसे करना है, ये हम लोग का चर्चा करना पड़ेगा, सीधा रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा।
तो जो पीपल के जो एस्पिरेशन है जिसकी बात आप कह रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं होता है, बीजेपी कहती है कि हमको ट्राइबल चीफ मिनिस्टर वो नहीं बना सकती है, पहले से एक नाम चल रहा है, तो वैसी स्थिति में पार्टी क्या करेगी आईपीएफटी?
बीजेपी एग्री का डिसएग्री और एग्री का सवाल ऐसी है कि ये पीपुल डिजायर उसको मान्यता देना नहीं देना उसका, ये बीजेपी का उसका जिम्मेदारी है, हमारा नहीं है।
नहीं, वैसी स्थिति में क्या आप सरकार में शामिल नहीं होंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप?
ये तो अभी चर्चा हो रहा ना, मीटिंग चल रही है, इसीलिए मीटिंग चल रहा है।
ये थे आईपीएफटी प्रमुख एनसी देवबर्मा। ये बातचीत फोन लाइन में गड़बड़ी की वजह से थोड़ी साफ नहीं थी, लेकिन देवबर्मा कह रहे थे कि संसदीय बोर्ड इस बारे में फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि कल बीजेपी नेता नितिन गडकरी अगरतला पहुंचने वाले हैं, उनसे बातचीत के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। देवबर्मा ये भी कह रहे थे कि जनजातीय मुख्यमंत्री की मांग उनकी नहीं बल्कि त्रिपुरा के जनजातीय लोगों की है। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये बीजेपी को तय करना है कि वो जनजातीय लोगों की मांग को मानती है या नजरअंदाज करती है, और अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती तो पार्टी इस बारे में प्रस्ताव पास करेगी। एनसी देवबर्मा की बातों से यह साफ हो गया है कि बीजेपी की खुशी में खलल तो पड़ी गई है। थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी संवाददाता सलमान रावी से, जो इस समय अगरतला में हैं, और पूछा कि त्रिपुरा का संकट किधर जाता नजर आ रहा है।
देखिए, ये जो सबसे बड़ा जो उपलब्धि जो सबसे बड़ी बीजेपी अपनी बता रही थी, त्रिपुरा जहाँ पे लाल किले को ध्वस्त किया है और वहाँ पर आईपीएफटी जैसे संगठन के साथ तालमेल करके ये आगे तो चले, लेकिन अब ये बहुत दुविधा की स्थिति में आ गए क्योंकि एक तरह से आग से खेलने वाली बात हो गई है, क्योंकि देवबर्मा साहब ने साफ कर दिया है कि दो शर्तें हैं उनकी, या तो त्रिपुरा लैंड की घोषणा हो जाए अलग राज्य के रूप में, और या फिर आदिवासी कोई मुख्यमंत्री बने। उनका हिंट तो यह है कि आईपीएफटी का कोई बने जो मुख्यमंत्री हो, लेकिन तब है कि आईपीएफटी के पास उतनी सीटें हैं नहीं, अकेले 35 विधायक जो हैं बीजेपी के पास हैं और 8 आईपीएफटी के पास हैं, जबकि 16 सीपीएम के पास हैं। यानी कि आईपीएफटी अगर चाहे भी तो सीपीएम के साथ नहीं जा सकती, सरकार बनने की सूरत नहीं है। लेकिन इस बीच में नितिन गडकरी और जयराम जो है वो आ रहे हैं त्रिपुरा और बात करने के लिए देव वर्मा से, और बीजेपी ने भी जो है कुछ शॉर्ट लिस्ट किया है आदिवासी नेताओं के नाम, जिनमें से एक अतुल देव वर्मा है जो कृष्णापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक डॉक्टर हैं। हालांकि उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा नहीं है, लेकिन वो संघ के बैकग्राउंड के हैं। दूसरे हैं राम पदा जमातिया, ये विश्व हिंदू परिषद के हैं और काफी इन्फ्लुएंशियल ट्राइबल लीडर माने जाते हैं। तो इसलिए अब ये दो लोगों के जो नाम अभी शॉर्टलिस्ट किए हैं, क्योंकि रामपदा जमातिया जो है वो ONGC में भी काम कर चुके हैं, तो अब ये बीजेपी का एक जो सबसे बड़ी दुविधा है वो ये है कि कहीं गज जीतने के चक्कर में थान ना हार जाए। 2019 के चुनाव हैं और अगर आईपीएफटी को वो नाराज करते हैं तो वहां पर भी काफी असर पड़ेगा वोटों के ऊपर, और यही वजह थी कि पहली बार आईपीएफटी के साथ समझौता करके बीजेपी त्रिपुरा में इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाई है। तो अब जो है जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थी बीजेपी, वहां पर मुख्यमंत्री का नाम डिक्लेयर करने में अब हालत खराब हो रही है।
जीत के बाद सियासी मुश्किल में फंसी बीजेपी, सलमान रवि यही बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक डेवलपमेंट ये भी है कि बीजेपी के जीत के बाद कथित तौर पर वामपंथ समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। बीबीसी संवाददाता सलमान रवि ने राजधानी अगरतला में कुछ लोगों से बात कर सच्चाई जानने की कोशिश की।
मैं इस वक्त अगरतला के लंकापाड़ा के इलाके में हूँ, जहाँ पर चुनावी हिंसा शुरू हो गई है। अभी मतदान खत्म हुआ है और वोटों की गिनती खत्म हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बनाई है, आईपीएफटी के साथ उसका अलायंस है, और उसके बाद से फिर यहाँ पर एक हिंसा का दौर फिर से शुरू हो रहा है, जो एक बहुत चौंका देने वाली बात है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए विधायक उम्मीदवार झुमू सरकार, जो यहाँ से लड़े हैं चुनाव, वो मौजूद है।
नमस्कार।
ये क्या दुकान जो देख रहे हैं, ये क्या जलाई गई है दुकान?
हाँ, जिस दिन गणना हुआ था, काउंटिंग हुआ था, उस दिन रात को इसमें आग लग गया। लोगों को कहना है ये जो रिजल्ट का दिन ये हुआ है, कैसे लगा है किसी को मालूम नहीं है। इससे पहले ऐसे घटना यहाँ पे नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों का बोलना है जो ये राजनीतिक हिंसा है, अभी जो सरकार में आया है बीजेपी का कुछ लड़का है जिसने ये कांड,
ये पूरे पंखे वंखे सब जल गए इसके और ये आग, लेकिन इसको चुनाव से जोड़कर आप क्यों देखना चाहते हैं? ये बताइए, यहाँ के रहने वाले हैं आप, आपका नाम क्या है?
हरिपुत अधिकारी। पहली बार ऐसा हुआ, ये हिंसा का घटना लगता नहीं है, ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। मेरा यहाँ तो कोई आग लगने वाला नहीं है, लगने वाला को
क्या लोग धमकी भी दे रहे हैं?
नहीं नहीं नहीं,
कम्युनिस्टों पर भी आरोप लगा है कि उन्होंने भी हिंसा की है। बंगाल का अगर जहाँ तक सवाल है तो वहाँ भी बहुत सारे वाकयात मिले जहाँ पर कांग्रेस के दफ्तरों को जलाया गया और तोड़फोड़ भी। हिंसा की राजनीति में जहाँ पर अगर बात आती है तो कम्युनिस्ट का नाम जरूर आता है।
नहीं, हम लोग हम जो देखा है, लेकिन अभी 18 साल में जब ये कम्युनिस्ट चला गया, बीजेपी आया, हर घर घर में आतंक है, आतंक मचा हुआ है।
आतंक क्यों है
हम नहीं जानते हैं। जो ये देखिए, दुकान को आग लगा दिया, वह एक घर में आग लगा दिया गया है, और वो जो CPM जो करता था उन लोगों को रास्ते में रोक के मार रहा है अभी।
ये बताइए आपके क्या कारण रहा होगा, जब इतनी पॉपुलर सरकार थी, इतने पॉपुलर CM थे, तो फिर क्यों इतना बुरा हाल हुआ?
सीट काम
आईपीएफटी के साथ जो है आप लोग साथ नहीं गए, तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? लेकिन आईपीएफटी को तो 8 सीट आई है।
नहीं, ये इसका खामियाजा नहीं है। ये जरूर लोगों को बातों से ये मालूम होता है EVM का कोई डिफॉल्ट हो सकता है।
तो अभी भी झुमू सरकार को यकीन नहीं हो रहा है कि CPM की इतनी बुरी हार हुई है विधानसभा के चुनाव में। वो कभी EVM मशीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो कभी वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि पैसों का खेल रहा हो और वोटर बिदक कर दूसरी तरफ जाकर उन्होंने वोट डाला है। सलमान रवि, BBC अगरतला।
भारत प्रशासित कश्मीर में कई वर्षों से स्थिति अस्त व्यस्त है और लोग थोड़े थोड़े समय के लिए होने वाली शांति में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन हर नई घटना शांति के माहौल को तनाव में तब्दील कर देती है। ताज़ा घटना दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में घटी है, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 चरमपंथी और 4 नागरिक मारे गए हैं। सेना का कहना है कि मारे गए नागरिक चरमपंथियों के सहायक थे, लेकिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये लोग क्रॉस फायरिंग में मारे गए, जबकि लोगों का कहना है कि इन्हें जानबूझकर मारा गया। जो भी हो, बंद प्रतिबंध और प्रदर्शनों के बीच घाटी फिर तनावग्रस्त है। सुनिए श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
सैन्य प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया के अनुसार कल रात दक्षिणी कश्मीर के शोपियान जिले में चरमपंथियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में आमिर खान नामी चरमपंथी मारा गया और उसके साथ 3 नागरिक थे जो इसके सहायक थे भी मारे गए। आज सुबह भी घटनास्थल के निकट एक चरमपंथी और एक नागरिक के शव मिले तो स्थिति और गंभीर हो गई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि आम नागरिक क्रॉस फायरिंग में मारे गए, लेकिन इस घटना के बाद शोपियान और निकटतम इलाकों में प्रदर्शनों की लहर चल पड़ी और मारे गए नागरिकों के परिवार वालों का आरोप है कि इन्हें जानबूझकर मारा गया।
उसने अपनी मां को अपने बहन के घर छोड़ दिया था, फिर उसी को दोबारा लाने के लिए गए थे। शाम को हमें मालूम पड़ा कि वहां पर कुछ लड़के शहीद हो गए थे, उनमें हमारा भी ये शहर है इसका नाम। कब तक हम मरेंगे? कब तक हमें मरना है? कम से कम हमारी ये गवर्नमेंट है, हम इनसे पूछ लेते हैं क्या हमें रोज मरना है।
अलगाववादी नेताओं सईद अली गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक ने पहले ही नागरिकों की मृत्यु के विरुद्ध बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान घाटी में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया और कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। यासीन मलिक ने श्रीनगर से शोपियान जाने का प्रयास किया परंतु इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाओं के लिए यहां के विधायक जिम्मेदार हैं।
शोपियान में कत्लेआम,
इसलिए इन तमाम कत्लों का जिम्मेदार यहां के असेंबली नामियाद असेंबली मेंबर जो सिर्फ और सिर्फ यहां पर है हिंदुस्तानी जालिम फौज की वकालत करने, उनको कानूनी जमानत फराहम करने के लिए ताकि वो यहाँ पर कत्लेआम कर सके।
गौरतलब है कि पिछले महीने एक मुठभेड़ के बाद प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच मुठभेड़ के दौरान भी 5 नागरिक मारे गए, जिसके बाद प्रशासन ने सेना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। महबूबा मुफ्ती की सत्ता में साझेदार बीजेपी ने इसका विरोध किया था। इस केस में सेना के मेजर आदित्य के नाम को लेकर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सभी तर्क रद्द कर दिए हैं। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग के कथित प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ देश भर के छात्र दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र लीक मामले में CBI जांच के आदेश की मांग कर रहे हैं। संसद में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों की CBI जांच की मांग मान ली है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में परीक्षार्थी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सुनिए सरोज सिंह की रिपोर्ट।
धूप में एक हाथ में छाता और एक हाथ में बैनर लिए देश भर के SSC परीक्षा में बैठे छात्र दिल्ली के लोधी रोड पर जमा हो रहे हैं। ये नज़ारा बीते 7 दिन से दिल्ली के लोधी रोड पर बना हुआ है। इनमें से कोई झारखंड से आया है तो कोई जम्मू से, कोई राजस्थान से तो कोई हरियाणा से। सभी छात्रों की एक ही मांग है, SSC की 21 फरवरी को हुई परीक्षा की CBI जांच हो और साथ ही 2017 के बाद हुई सभी परीक्षाओं की भी जांच हो।
हमें CBI की मांग चाहिए, जो भी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं हमारे, जो 21 का होना है उस पे हमें CBI की जांच चाहिए। हमें सिर्फ एक एग्जाम पे जांच नहीं चाहिए, जितने भी 2017 के अंदर एग्जाम्स हुए हैं उन सारे के अंदर CBI की जांच चाहिए।
मैम एक्चुअली क्या है, SSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है CGL लेवल के, CHSL लेवल के, MTS लेवल के, तो क्या होता है कि एक एग्जाम अगर लीक हो गया, जैसे 21 का तो बाहर आ गया, तो इन्होंने कह दिया कि हाँ जी 21 की जांच करवा देंगे, पर बाकी एग्जाम कहाँ गए? जांच तो उन्हीं की भी तो होनी चाहिए, जो बाहर नहीं आए तो मतलब ये थोड़ी ना कि हुआ नहीं है।
हमें चाहिए ऑर्डर, चाहिए सख्त ऑर्डर चाहिए, तभी जाके CBI अंडर एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट जज के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सभी SSC एग्जाम में होनी चाहिए, चाहे CPO, CHSL हो, CGL हो या MTS हो, सारे एग्जाम इन्वेस्टिगेशन CBI करे और वो भी टाइम बाउंड होने चाहिए, ये नहीं कि 2-3 साल लग जाए उसकी।
सब हम लोग ग्राउंड हैं, SSC स्कैम की 17 तारीख को एक आधी घंटा पेपर चला था, उसके बाद में एक सेंटर का एंसर की वहाँ मिली थी, फिर उन्होंने दबा दिया वहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कि वहाँ इंक्वायरी बिठा रहे हैं, एंसर की कहाँ से आई थी सेंटर पे।
सोमवार को संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों की CBI जांच की मांग मान ली है। उन्होंने कहा
जो उनकी डिमांड थी SSC के संबंधित छात्रों की, वो डिमांड पूरी की जा चुकी है और CBI जांच का आदेश किया जा चुका है।
दरअसल पूरा मामला SSC की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के दूसरे चरण की ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ा है। परीक्षार्थियों का आरोप है कि 17 से 22 फरवरी 2018 तक हुए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के दूसरे स्तर की ऑनलाइन परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे। छात्रों का ये भी आरोप है कि लीक में SSC के अधिकारी और ऑनलाइन परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी शामिल है। SSC ने इन आरोपों के बाद CBI जांच की मांग स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी। केंद्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है, लेकिन छात्र अब भी अपनी मांग पर अड़े हैं। सरोज सिंह, BBC, दिल्ली।
दिन भर
शॉर्ट वेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले जावेद आबिदी का 53 साल की आयु में निधन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से वो छाती में संक्रमण की समस्या से परेशान थे और रविवार शाम हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। वो खुद चलने फिरने में असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने विकलांग लोगों को सुविधाएं दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उन्हीं के प्रयासों से विकलांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कैसा था उनका संघर्ष और क्या क्या थे उनके योगदान, इसी की जानकारी के लिए थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी इकबाल अहमद ने बात की डिसेबिलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की निदेशक रमाचारी से, जो लंबे समय तक जावेद आबिदी से जुड़ी रही थी।
बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आप देखें 1990s में उन्होंने जब काम शुरू किया था डिसेबिलिटी सेक्टर का, तब भी डिसेबिलिटी सेक्टर का जो फोकस था ज्यादातर एजुकेशन कराना या थेरेपी कराना या और अलग अलग संस्थाएं थी। ब्लाइंड लोगों का ब्लाइंड का संस्था था, डेफ लोगों का अपना संस्था था, ज्यादातर एजुकेशन वगैरह में काम करते थे, स्पेसिफिक सोसाइटीज थी, इस तरह काम करते थे। सर्विस डिलीवरी में ज्यादातर काम था। जब मिस्टर आबिदी का जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जो सारे डिसेबिलिटीज को एक प्लेटफॉर्म में लेके आना, और वो पहले नहीं था, क्योंकि ब्लाइंड लोग ब्लाइंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, डेफ लोग का तो मूवमेंट भी नहीं था और स्पेसिफिक सोसाइटी वगैरह उनकी भी आवाज नहीं थी और कई लोगों की आवाज नहीं थी। लेकिन जब वो इकट्ठे मिस्टर आबिदी ने जो क्रॉस डिसेबिलिटी मूवमेंट कहते हैं उनको साथ लाना, डिफरेंट डिसेबिलिटीज के लोगों को साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म में लाना, आई थिंक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद ऑफकोर्स डिसेबिलिटी लेजिस्लेशन, अगेन डिसेबिलिटी लेजिस्लेशन 1995 का लेजिस्लेशन, उसके बाद 20 साल बाद ये जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का लेजिस्लेशन लाना, सिर्फ लाना ही नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो पहला लेजिस्लेशन था 1995 में इनका मूवमेंट था और लेजिस्लेशन तो आ गया था लेकिन वो 3 साल तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था। तो बार बार गवर्नमेंट के साथ डिमांड करना, PILs करना, लेटर लिखना, कंटिन्यूस मीडिया के साथ काम करना, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। कुछ भी अगर ले लीजिए, एक्सेसिबिलिटी ले लीजिए, आज तो बहुत बड़ा कैंपेन है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, लेकिन 90s में रैंप वगैरह का शायद वोकैबुलरी में भी नहीं था। रैंप भी दिखते थे, सिर्फ एनजीओ में रैंप दिखते थे। अगर आज हम रैंप देख रहे हैं हर जगह हम सुविधाएं जो देख रहे हैं, इवन रिजर्वेशन वगैरह जो है स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सब वोकैबुलरी में था भी नहीं। 90s की बात कर रही हूँ मैं। ये सब आई थिंक इक्वालिटी के बारे में बोलना और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए काम करना, राइट्स के लिए काम करना, आई थिंक मिस्टर आबिदी का ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है।
डिसेबिलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की निदेशक रमा चारी थी। और अब आपकी चिट्ठियों, आपकी पातियों की बारी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। लेकिन आज बदलाव सिर्फ ये है कि एक नहीं बल्कि दो दो राजेश स्टूडियो में मौजूद हैं। दूसरे राजेश कौन है ये आपको अंदाजा लग ही गया होगा, फिर भी
नमस्कार राजेश प्रियदर्शी की ओर से।
राजेश प्रियदर्शी और राजेश जोशी, आप सबको नमस्कार कहते हैं और चिट्ठियां शुरू करते हैं। राजेश,
बहुत सारी चिट्ठियां और डाक वाली चिट्ठियां मैं पहले लेना चाहूंगा, और ये कई चिट्ठियां हैं और सब में लोगों ने रेहान फजल की जो विवेचना है उसकी बहुत तारीफ की है, जो सुभाष चंद्र बोस वाली विवेचना, और उनका ये कहना है कि बहुत ही सटीक सारगर्भित जानकारी दी, ये हमें मिला है, ये एक अंतर्देशीय पत्र है। और राम मेहर दहिया जी हैं, इन्होंने लिखा है सोनीपत हरियाणा से, और इनके गाँव का नाम है रोहट
गाँव से
जी। और चिट्ठी हल्द्वानी से भी आई है, उत्तराखंड से, जिस इलाके से आपका संबंध है।
ये रावत जी की चिट्ठी तो नहीं,
रावत जी, गंगा सिंह रावत हल्द्वानी से, और इनका भी कहना है कि रेहान साहब की विवेचना बहुत अच्छी लगी। ये पत्र है बिहार से, जिला पश्चिमी चंपारण के थाना नौतन से अमर साह ने नीले रंग के पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी लिखी है, और इन्होंने ये भी लिखा है साथ में कि इनके भतीजे का नाम भी पढ़ा जाए इसमें, विजय नंदन, अखिलेश कुमार, राकेश कुमार और प्रशांत कुमार, और इन सब की तरफ से चिट्ठी लिखी है अमर साह ने नौतन से, जो कि पश्चिमी चंपारण में है
जी।
ये बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में विष्णु वर्मा की भी तारीफ आई है, जिसको देखकर रेहान फजल साहब काफी खुश होंगे
क्योंकि उनकी अपनी हैंडराइटिंग भी बहुत खूबसूरत
जी, है। जी तो विष्णु वर्मा जी ने ये चिट्ठी भेजी है जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश से और इनके गांव का नाम है काकोली।
तो ऐसा नहीं है कि ये जो चिट्ठियां भेजी हैं इन्होंने सिर्फ रेहान फजल की विवेचना की तारीफ की, और भी बातें कही हैं
बहुत सारी,
लेकिन हम सबको ले नहीं सकते हैं
जी।
ईमेल इंतजार कर रही हैं, कहां से शुरू कर रहे हैं?
जी बहुत सारे हैं, ये इंजीनियरिंग के छात्र हैं, बीबीसी बचपन से सुनते हैं, इनका नाम है रक्षित कुमार और ये लिखते हैं ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने लिखा है कि बीबीसी से पहले मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही, बचपन से सुनता रहा, लेकिन बीबीसी ने एसएससी एग्जाम में धांधली को लेकर चल रहे आंदोलन को कम तवज्जो दी जिससे मैं बहुत दुखी हूं।
ये आपकी बात, आपकी शिकायत बहुत ही वाजिब है और आज शाम के कार्यक्रम में यानी जिस कार्यक्रम को आप ये सुन रहे हैं उसी में एसएससी के आंदोलन को लेकर के एक रिपोर्ट है। अगर आपने फेसबुक देखा हो बीबीसी हिंदी का तो आज हमने छात्रों से या जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले जो नौजवान हैं उनसे भी बात की है। हाँ ये चूक हमसे हुई है कि ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए और आपकी आलोचना हम सरमाथे शिरोधार्य करते हैं।
ये पत्र है गांव सिमरकोला से बांका जिले में बिहार से ये चिट्ठी आई है और इनका कहना है कि ये पुराने श्रोता है, इनका नाम है कुमुद कुमार और ये लिखते हैं कि बीबीसी के जितने भी कार्यक्रम हैं मैं सभी सुनता हूं। आज नमस्कार भारत में पाकिस्तानी सेनेट के ऊपर जो डायरी सुना रहे थे वो बहुत अच्छा
ये
लगा।
ये वसतुल्लाह खान साहब की डायरी का जिक्र कर रहे हैं, नाम इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन हम समझ ही गए कि पाकिस्तान से जो डायरी है वो वसतुल्लाह खान ही लिखते हैं। तो आपकी बात उन तक पहुंच गई है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह लिखते रहें।
ये अगली चिट्ठी भी ईमेल है लेकिन बिहार से आई है और ये देखिए ये इनका भी वही कहना है जो अभी दूसरे श्रोता कह रहे थे। मुजफ्फरपुर के दामू चौक से ये लिखते हैं बिहार से कि शर्म आती है बीबीसी के रवैये पर, 7 दिन से जवान भारत एसएससी सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली के बाहर पेपर लीक के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर है पर आप लोगों ने वाजिब कवरेज नहीं दिया, कारण इससे आपको क्या लेना देना।
दरअसल आप जो जो श्रोता हैं जो सजग श्रोता हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारी कहां गलती हुई है और कहां हमने दुरुस्त काम किया है। तो आपकी जो आलोचना है इसको मैं बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा हूं राजेश, ये तुम भी सहमत होगे इस बात से कि जो चीज 3 दिन पहले होनी चाहिए थी वो आज हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। कई बार हम लोगों को ये अंदाजा लगाना होता है कि कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है, कब तक खींचेगा, क्या उसकी मांगे हैं, तो और इस बीच होली का त्यौहार भी था, लेकिन आज हमने उस कमी को पूरा किया है। चिट्ठियां भी और भी हैं, ईमेल अभी और भी हैं, लेकिन राजेश प्रियदर्शी मैं आपको रोकूंगा क्योंकि घड़ी हमें कह रही है कि अब स्टूडियो छोड़ दीजिए। उससे पहले पता बता दें, अगर चिट्ठी लिखना चाहें तो लिखिए बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003 और ईमेल लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
चिट्ठियां इसी तरह लिखते रहिए और अब खेलों की दुनिया में आज क्या है खास, आइए सुनते हैं।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कुश्ती के मैदान पर और ये कुश्ती का मैदान किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में है जहां पर सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के पहलवान बजरंग पुनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बजरंग ने ईरान के योनिस अली अकबर को 10-4 से हराकर ये पदक आज हासिल किया। तो वहीं 70 किलो वर्ग में विनोद कुमार ने किर्गिस्तान के पहलवान को हराते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। आपको बता दें इससे पहले भारतीय महिला पहलवान नवजोत कौर ने चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। नवजोत ने 65 किलो वर्ग में जापान की खिलाड़ी मिया इमाई को 9-1 से पटकनी दी थी। ये मुकाबला उन्होंने 3 मार्च को जीता था और इस मुकाबले को जीतने के बाद वो भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने सीनियर एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हो।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के इरादों के बीच क्षेत्रीय दल आईपीएफटी ने मुश्किलें खड़ी कर दी है। आईपीएफटी ने अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री पद की मांग की है। सीरिया में मानवीय सहायता आपूर्ति के साथ लगभग 50 गाड़ियों की एक टुकड़ी युद्धग्रस्त इलाके पूर्वी गुटा में प्रवेश कर चुकी है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के शांति प्रतिनिधिमंडल के लिए शानदार डिनर की व्यवस्था की है, यह जानकारी दक्षिण कोरियाई सरकार ने दी। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिनभर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया अजित सारथी ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्र ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।